तो अभी तक जो बात की है ना हमने एहसान के मानों में से, प्रैक्टिकली वो खूबसूरती का टॉपिक शुरू किया, हुसन का मानी, यानी ये एहसान से हुसन। तो हुसन में है ज़ाहरी हुसन, और उस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करके बहुत कुछ उसमें ले आना, ये ज़िंदगी का गोल नहीं है। किस हद तक खूबसूरत बंदा कर सकता है अपने आप को, वैसे ये बराह रास्त टॉपिक नहीं आज, लेकिन यहाँ बस इतना सा समझ ले कि अब जान के फिर बदसूरत लगना और बेहंगम लगना भी बुरी बात है। देखिए, तीन कपड़े तो होते ही हैं ना, ट्राउज़र, शर्ट, दुपट्टा, पहनने तो है ना, तो आप एक रंग के पहन ले तो क्या ये इसराफ है? घर में पर्दे लगने हैं ना, और कारपेट भी बिछना है, तो एक ही रंग का ले लें तो क्या ये बहुत शो ऑफ हो गई, शोए मारते हैं? नहीं, जो चीज़ लेनी है उसको अगर आप अच्छे तरीके से, अच्छे टेस्ट के साथ ले लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। मसला क्या है कि जब ये मकसद हयात बन जाता है, और दूसरी बात है कि इसी बुनियादों पे रिश्ते होते और छूटते हैं। एक बच्ची का रिश्ता सिर्फ इसलिए छूट गया कि शादी से अगले दिन जब उसने अपने लेंजेस उतारे जो ब्लू थे, तो मियाँ ने कहा कि ये तुम्हारे लेंजेस थे? हाँ, बात आगे बढ़ी। उस लड़के ने शुरू से माँ बहनों को एक ही मियार दिया हुआ था कि जिसको भी ढूंढना ना उसकी आंखें नीली हों, तो वो तो आंखें नीली नहीं थी, वो जब देखने आए तो इत्तफाकन उस बच्ची ने नीले लगाए हुए थे। उन्होंने समझा कि ठीक है, नहीं पूछा, कोई पूछता है? तो वो इस बात पे वो मामला बिगड़ गया कि ये तो धोखा हो गया। बात समझ रहे? ये मेयार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा खुश रहें, घर को साफ रखें, बर्तन है ना, अच्छे साफ सुथरे बर्तनों में खाएं। लेकिन इतने बर्तन कि एक मेहमान आ जाए तो आधी अलमारी बाहर आ जाए, ये ज्यादती है। आज हम अपने मुल्कों में स्पेशली ये चीज़ें बहुत कसरत से देखते हैं कि हमारी ही बहनें और साथी जो हैं वो सारा दिन किचन से नहीं निकल पाती, हालांकि तीन तीन चार चार हेल्पर्स मौजूद हैं। ये ज्यादती है, फिर इसको बजाएं, दावत करें, खाना खिलाना बहुत प्यारी बात है, अतिमो ताम प्यारे कामों में से एक है, लेकिन अब उस दावत के नाम पे 20 डिशें बना के फिर कमर पकड़ के बैठना और नमाज भी जाए और दो तीन दिन आप अपने कामों से पीछे हो जाए, ये ज्यादती है, ये नहीं करें। बाकी खूबसूरत लगें। आज हमारी इबादत कहाँ है? मस्जिदें। मैं तो कभी मस्जिदों में कहीं जा के देख लूँ, कभी कुछ तो ऐसी होती हैं कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं कहती हूँ यहाँ फरिश्ते आते होंगे, ये जगहों को देखकर कोई इस्लाम कबूल करेगा? आप देखिए कि साफ सुथरा होना और बात है, फैंसी होना और बात है, तो ज़ाहर खूबसूरती का इख्तमाम करें, लेकिन लिमिट्स के अंदर, एक्सपोजर ना बनाएं। आप खूबसूरत से खूबसूरत कपड़े पहने, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो फिर आपका वो रूप नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको नहीं छेड़ते, अंदर के ऊपर बात कर लेते हैं, अंदर की खूबसूरती, किरदार, बच्चियों का ऐसा किरदार बनाएं कि जिधर जाएं वो आपको दुआएं दें। आप कब्र में भी चले जाएंगे ना तो लोग दुआएं देंगे। किसी से बात हो रही थी, वो कहती है मैं अपनी बहू से इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि जब ये मेरी खिदमत करती है या मेरे आगे मुअद्दब है। देखिए, काम तो अब कोई नहीं कराता, सीरियसली माफ़ कीजिए, आज कहाँ सासे बेचारी काम कराती हैं? वो तो दौर गुजर गए कि 100 100 रोटी पकाती थी बहू, आज वो वक्त नहीं है। आज तो इस्त्री किए हुए कपड़े आपके हैंगर्स में आते हैं और चार चार मासियाँ आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आज की सास का सिर्फ इतना सा तकाजा है कि स्माइल तो रखो चेहरे पर, कोई आया तो बैठो तो सही पास। मिसाल दे रही हूँ ना, एक दो छोटी मोटी कमोबेश। और अगर आपके हाथ में सेलफोन है और आप अकेले बैठ के उस फोन पे हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और पास बैठे के साथ आप हाल भी नहीं पूछ रहे, तो ये दूरी है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ दें। आप मैं अपने ऊपर लें, चलिए, क्या चीज़ अंदर को खूबसूरत करती है, ये सवाल है। बाहर को तो आपको पता है बहुत चीज़ें खूबसूरत करती है ना, अच्छे खाने खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ऑर्गेनिक लें, और ज़ाहरी हुसन के टोटके तो आपको बड़े, अब तो व्हाट्सएप पे भी बड़े मिलते होंगे, माशाल्लाह ग्रुप बन गए पूरे पूरे, हमारा नहीं है लेकिन ऐसे ग्रुप्स हैं आज, वो तो हो गए। अंदर को क्या चीज़ खूबसूरत करती है? तकवा। और वज़य्यना कुलूबुकुम, अल्लाह ने दिलों को मुज़य्यन कर दिया, किससे? तकवा और ईमान। आपके अंदर जितना अल्लाह का प्यार, तवक्कुल, तकवा होगा, आपका अंदर इतना खूबसूरत होगा। अच्छा, एक फ़र्क कभी कम ही लोग कर पाए, खूबसूरत लगना और लोगों का प्यार लेना, इसमें फ़र्क नहीं कर पाते। आप मुझे बताइए, शादी में गए, 100 लेडीज़ बैठी हैं, प्यारी कितनी लग रही होती हैं, और आपको प्यार कितना प्यारा होता है? हमारा तो वाला जो प्यारी लगती है उस पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये इतनी प्यारी क्यों लग रही है। हाँ, जिनको उन पे प्यार आता होगा उनको आना नहीं चाहिए, औरतों को तो नहीं आता औरतों पे प्यार, औरों को औरों पे आ सकता है ना। प्यार और चीज़ है, प्यार तो शक्ल का कुछ तकाजा ही नहीं करता। क्या माँ अपने बच्चे के मोटी मोटी आंखों की वजह से प्यार करती है? तो बात को समेटू, अल्लाह से ये कहें कि आपको प्यार मिले। हमारी तलब है प्यार, लव, मोहब्बत। और प्यार कब मिलता है? अल्लाह के नबी की वो हदीस याद करें, हदीसे खुब भी कहते हैं इसको कई लोग, कि अल्लाह ताला को एक बंदे से प्यार होता है, फिर जिब्रील को बुलाते हैं कि आप भी इससे प्यार करें, फिर जिब्राइल आसमान के फरिश्तों में यही सदा लगाते हैं, उससे मैं भी प्यार करता हूँ, फिर अल्लाह भी करते हैं, फिर आसमानों वाले सारे फरिश्ते उससे प्यार करने लगते हैं, और होते होते फिर ज़मीन के फरिश्तों को ये पैगाम दिया जाता है, फिर वो भी उस बंदे से प्यार करते हैं, और उसके बाद फिर दुनिया वालों के दिल में उसके लिए मोहब्बत और मकबूलियत डाल दी जाती है, हदीस में जो अल्फाज हैं, यानी फिर दुनिया वाले भी उससे प्यार करते हैं। तो ये दुआ करें जिसको हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा था, वजल लिसान अस्सिदकिन फिल आखिरीन, अल्लाह मेरे बाद वालों में मेरा जिक्र खैर रखना। तो प्यार मांगे, प्यारा मांगना ज़रूरी नहीं। आपकी बेटी बहुत भी प्यारी होगी ना, तो नहीं प्यार मियाँ को होना उससे तो कोई नहीं होना, और बिल्कुल भी प्यारी नहीं होगी लेकिन प्यार हो गया तो अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर की हुसन। चलिए अब अंदर के हुसन में एक चीज़ टोटका लिख लें, दिल को प्यारा बना लें। ये अब आगे इसके दूसरे लेवल पे लाने वाली हूँ बात को। आप दूसरों के साथ अपना दिल अच्छा करते, जब अपना दिल प्यारा कर लें चेहरा खुद ही प्यारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा एहसान का मानी हुसन, अब देखिए एहसान के एक लफ्जी मानी है किसी पर भलाई करना। ये है जो शुरू में आप में से अक्सर ने उर्दू के साथ जोड़ा था ना, हक से ज़्यादा देना, उर्दू में इस मानों में ज़्यादा आता है। सूरत कसस में लोगों ने कारून से कहा था, वाहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलतमंद बनाया तो तुम भी लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए इनकी मदद में अपने माल में से खर्च करो। एहसान के मानी किसी के साथ हुस्न सलूक करना के भी हैं और किसी शय को हसीन बनाना भी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाहु अन्हो से मरवी एक हदीस नबवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कतबल एहसान अला कुल्ली शयइन, बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ के ऊपर एहसान को वाजिब कर लिया है, यानी हर चीज़ के लिए ये वाजिब कर लिया है कि उसमें खूबसूरती पैदा की जाए। क्या कायनात पे अल्लाह का ये असूल आपको दिखता है? आसमान खूबसूरत, दरख्त खूबसूरत, फल खूबसूरत, तो बस क्या पता चला, लोगों पर भलाई करें। इसको थोड़ा सा देखते हैं, एहसान का सबसे पहला हकदार खुद को खूबसूरत बनाना। अभी तक इस मेन टॉपिक पे बात हुई है एहसान की तारीफ के बाद, अब दूसरे दर्जे पे ले आइए। आप एहसान किसके साथ करें? लोगों के साथ करें। कैसे करें? उनके साथ अच्छा करके या फिर अपने शर से उनको बचा के। कि अगर तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा भी ना करो। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते तो तुम किसी से नफरत भी ना करो। और अगर तुम किसी को दे नहीं सकते तो उसे ले तो ना लो। और अगर तुम किसी के साथ कोई भी मामला करोगे तो तुम्हें उस मामले को करते वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए। आपने फरमाया कि फ़ैज़ा कत्ल तुम फ़ाख़्सिनुल क़त्ल ही, जब तुम किसी को कत्ल करना हो, यानी अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए, तो क्या करो? खूबसूरती के साथ कत्ल करो। कत्ल के अंदर खूबसूरती से मुराद ये कि अगर कोई शख्स शरीयत की गिरफ्त में आ गया है और इस पर कत्ल की हद नाफिस हो गई है, तो इसे इस अंदाज़ और इस तरीके से कत्ल किया जाए कि इसे कम से कम तकलीफ़ हो। क़ुरूने उला में जबकि इस्लामी रियासत अपनी आबोताब के साथ कायम थी, पेशावर जल्लाद होते थे जो अपने फ़न में माहिर थे, और वो तेज़ धार आले से एक ही वार में गर्दन को तन से जुदा कर देते थे जिससे तकलीफ़ कम होती थी। और अब भी सऊदी अरब में इस्लामी सज़ाएं नाफिस हैं। सज़ा के तौर पर सर कलम होते हैं तो इसका यही तरीका होता है कि पेशावर जल्लाद तेज़ धार आले से एक ही वार में गर्दन उड़ा देते हैं। और हदीस के अगले टुकड़े में आपने फरमाया, और जब किसी जानवर को ज़िबा करने लगो तो खूबसूरती और उम्दगी से ज़िबा करो। اور اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ذبح کرتے وقت اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے اور اسے زیادہ تکلیف نہ ہونے دے۔ اگر کند چھری سے جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ذبیحے کو یقیناً بہت زیادہ تکلیف ہوگی، جبکہ تیز دھار والی چھری سے ایک ہی وار میں جانور ذبح ہو جائے گا اور اسے کم سے کم تکلیف ہوگی۔ بات واضح؟ تو احسان کا حق کس کے اوپر؟ بندے تو بندے، انسان تو انسان، جانور کو بھی ذبح کر رہے ہیں تو کند چھری سے اس کو سلاٹر نہ کریں۔ آپ ذرا اس معاملے پہ غور کیجئے۔ اس کو دین کی اصطلاح میں فورتھ فاؤنڈیشن آف اسلام کہتے ہیں، اور وہ ہے معاملات، ریلیشنز، تعلقات۔ دین شروع ہوتا ہے عقائد سے، عقیدہ روٹ ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ، پھر سیکنڈ فیز ہے عبادات کا، تیسرا ہے حسن اخلاق کا، کریکٹر بلڈنگ کا، اور چوتھا ہے معاملات کا۔ اور دو لفظوں کی حدیث ہے، یاد کر لیں، الدین المعاملہ، دین تو معاملے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، میں اس حدیث پہ جتنا غور کروں مجھے اتنا تھوڑا لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں دین کیا ہے؟ نماز، پہلے فرض، پھر سنت بھی، پھر نفل بھی۔ پہلے پانچ پڑھتے تھے، اب سات پڑھنے لگ گئے، اب نو ہو گئے، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے 29-30 روزے تھے، اب ہر مہینے کے بھی 3 ہو گئے، اور اس کے بعد اب ہر ہفتے کے بھی 2 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ بھی دین ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے دین کی تعریف کیا ہے؟ دین تو اصل میں معاملوں کا نام ہے، آپ کے مجھ سے معاملے اور میرے آپ سے معاملے نہیں صحیح تو دین ہی صحیح نہیں ہے۔ پھر یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ حافظ قرآن سمجھ کر بچی دی تھی تو وہ تو مارتا، اور ہم نے تو قاری قرآن کو دی تھی تو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میرا آپ کا دین میرے آپ کے انٹریکشن سے دکھتا ہے۔ پھر ایک پنجابی کا جملہ، راہ پیا جانے تھے واہ پیا جانے۔ آپ کو کسی کی اصل تب کھلتی ہے جب آپ اس سے ملتے ہیں۔ اس وقت یہاں بیٹھ کے میں آپ کو سونے جیسی باتیں کروں، میٹھی باتیں کروں، میٹھی سنتیں، پیاری سنتیں، بہت آسان ہے، عملی زندگی میں بہت مشکل ہے۔ کل صبح ہم نے ایک لیکچر میں لیسنز فرام سیرہ کیے، مثال دیتی ہوں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے بہت سارے لیسن، تقریباً 40 کے قریب میرا خیال ہے میں نے بولے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا تھا کہ غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لو، اس لیے کہ دین کو فائدہ ہو جائے گا۔ اور مثال اس کی صلح حدیبیہ کی تھی، کہ عمر جیسا کلیگ بھی کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کیوں، آپ کا کیا قصور ہے، آپ کو جھوٹے، اسلام سچے، سب ہاں ہاں، لیکن عمر صبر کرو، یہ پتہ ہے۔ یہ کیسی فوت ہے، ون سائڈڈ شرطیں مان کے جا رہے ہیں، اور مکہ سے چند میل کے باہر فاصلے پہ واپس جا رہے ہیں، آپ ہوتے میں ہوتے جاتے، سعودی حکومت سے لڑ بھیڑ کے ہم چلے ہی جاتے اندر، کے ہمیں اندر کیوں نہیں جانے دے رہے۔ ایک دفعہ ہم جدہ ایئرپورٹ پہ تھے، ٹرانزٹ تھے امریکہ سے، کافی گھنٹے کا گیپ تھا، لیکن ہمارے پاس سعودی ویزا نہیں تھا۔ آپ کو پتا کہ سعودی واحد ملک ہے میرا خیال ہے، یا پاکستان، کہ جس کا امریکن پاسپورٹ ہولڈرس کو ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کی منتیں اور ان کے وہ جیسے ترلے دیکھے جو انہوں نے کاؤنٹر پہ جا کے کیے۔ ہمارا 18 سے 20 گھنٹے کا اسٹاپ تھا کہ یہ ہمارے پاسپورٹ پکڑ لو، ہمارا سارا سامان لے لو، گارنٹی لے لو، ہمیں اجازت دے دو، ہم باہر جائیں، مکہ میں ایک عمرہ کر کے آ جائیں۔ نہیں دی انہوں نے اجازت، ہی کینٹ۔ اس نے کہا آپ کے ویزا نہیں ہے، اور آپ عمرے کے ویزے پہ نہیں، آپ ٹرانزٹ ہیں نہیں۔ اور کتنا مشکل ہوتا ہے ٹرانزٹ ہونا، اور ایسے جگہوں پہ جہاں کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے، اور کرسیوں پہ بیٹھ کے اور اونگ اونگ کے آپ گھنٹوں گزاریں۔ تو ذرا سوچئے، صحابہ نے 500 میل یا کلو میٹر کا فاصلہ طے کر کے مکے کے دروازے سے خود کو واپس لے جانا چاہا۔ ہم ہوتے، ہم تو کہتے جو ہوتا کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کی لیڈرشپ تھی کہ جو چیز دین کو فائدہ دے دے قبول کر لو، اور یہی ہوا الحمدللہ، آپ نے کیا۔ تو یہ بات سنانے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، یہ بھی بتا دوں، اگر آپ اللہ کے لیے کریں۔ اور اگر آپ کی انا اور آپ کی ذات بڑی موٹی ہو تو دونوں ہی جھوٹے ہوں گے، دونوں ہی نہیں مانیں گے، دونوں ہی غلطی پہ ہوں گے، کوئی نہیں مانے گا۔ تو یاد رکھیے، لوگوں سے معاملہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کریں، اپنے ارد گرد والوں سے جا کر پوچھیں۔ آج چلیں پوچھئے، میاں سے نہ پوچھئے گا، آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی، پھر ان کو ہی اٹھا کے آپ کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا۔ ان غریبوں سے نہ پوچھیں، ان کو معاف کر دیں، لیکن اپنی بہوؤں سے، اپنی ساسوں سے، یہ پیارے دو رشتے ہیں نا ہمارے بدنام ترین، अपनी नंद से अगर है तो, अपनी भाभियों से, और इसी तरह के चंद और रिश्तों से पूछिए मैं कैसी हूँ। आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन मोमिन का आईना है। आईना क्या करते बोला? अब मैं जो बात कहूँगी ना, आपने हंसना नहीं है। आईने के सामने हम जाके कैसे दिखते हैं? स्माइली, हेलो, हाउ। कभी आप अपने आप को आईने में खड़ा करके देखे हैं? लोग कितने भोले बन जाते हैं आईने के सामने, तो आईना भी फिर आपको कहता है यू लुक सो प्रीटी, सो इनोसेंट। 16 साल नहीं तो चलो 26 साल की तो लगी रही हो, ऐसे ही है ना। आप तसव्वुर में तो लाएं, आईने की जगह आपका बच्चा खड़ा है और वो आपको देख रहा है। क्या आप वही फेस एक्शंस जो आईने के सामने होते हैं वो अपने बच्चों से बात करते हुए भी होते हैं? आपको वो किस किस फीचर और किस किस शक्ल में देखते हैं? अच्छा, अब आईना क्या करता है भला? आपके ऐप दिखाता है, नक्स दिखाता है ना। क्या आपके इर्द गिर्द वाले आपको आईना दिखा सकते हैं? मुहावरा भी इसी से बना हुआ है, उसने उसको आईना दिखाया। क्या हमारे इर्द गिर्द वालों की जरूरत है कि वो हमें हमारे नक्स ऐब दिखाएं जैसे आईना दिखाता है? आप सोचिए, आईना आपकी मासी है बेचारी, 3 घरों से भी काम कर करा के आई भी, और आप उसके सामने खड़ी हैं, आप किस टोन से बात करती हैं उससे, और वो आपके क्या क्या फीचर्स देख रहे होते हैं? और शौहर बेचारे वादा कर गए थे 5 बजे आऊँगा और शॉपिंग पे ले जाऊँगा, अल्लाह का बंदा, बड़ा ही तरस आता है मुझे शोहरों पे। आपको मेरे शोहर पे आना चाहिए बेचारे पे ना। अब वो गरीब किसी मजबूरी में पहले फंसे, बाद में ट्रैफिक में फंस गए, वो भी लंदन की, 7 बजे घर आए। अब जरा सोचिए आपका कैसा चेहरा वो आईना देख रहा है। यानी आप अपने आप को दूसरों की नजरों से तो देखिए, आप वहां कैसी लगती हैं? जब हम शाउट करते हैं, हम चीखते हैं, हम अपना हक बता रहे होते हैं। यानी मैं किसी से यही बात कर रही थी कि जब आप अपनी बात बता रहे होते हैं या बता रहे थे, आपको नहीं पता आप कैसे लग रहे थे और आप किस टोन में बात कर रहे थे। याद रखिए, लोगों के साथ आइनों वाला मामला करें, फिर आप देखिए दूध का दूध और पानी का पानी। हजरत उमर फारूक के सामने किसी ने दूसरे की तारीफ की, बड़ा अच्छा है, कहने लगे ये बता कि क्या ये तेरे हमसाए में रहता है? कहा नहीं। कहा क्या कभी तूने इसके साथ सफर किया है? कहा नहीं। कहा क्या कभी इसके साथ कोई मामला पड़ा जिसको रुपए पैसे या रिश्तेदारी का मामला? कहा ये भी नहीं पड़ा। कहा फिर चुप हो जा, तुझे हक नहीं है, तुझे हक नहीं है इसकी तारीफ करने का। क्यों? पता कब लगता है राह पे आते जवाब पे आ जाने, जब सफर करते हैं तब भी पता लग जाता है। पीछे हो, जगह दे मुझे, आप खुद चौड़े होके बैठे हैं, अगले की भी जगह ले लेते हैं। और या फिर आप किसी के हमसाए में रहें तो वो आपकी गवाही देंगे। और प्यारे नबी के हुस्न अखलाक को देखिए, आपके पास तीनों ही गवाहियाँ मौजूद हैं। घर का नौकर कह रहा है कि 10 साल में मैंने अपने नबी से उफ का लफ्ज़ नहीं सुना, अनस बिन मालिक। आज आपकी मासी ये गवाही आपके बारे में देती है? यहाँ बैठे हैं तो मासियाँ कोई नहीं भाग जाएंगी, और 5-6 पाउंड लेकर घंटे की आई तो हमने गालियाँ देनी है। यहाँ वालियों को ताते कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, हेल्प योर सेल्फ, हैव कप ऑफ टी प्लीज, मेक टी। और वहाँ वाली ले ले हाँ आपका ग्लास और जाके पानी पिए, उसमें कहेंगे सारे कैविटीज़ के सारे ज़रा सी मेरे ग्लास में लगा दिया। इंसानों से मामला खूबसूरत रखें, ये कल मेरे आपके गवाह होंगे। इन्होंने रोकना है कंतरा पे। चलिए आप ये भी हुसन में नोट कर लें, क्यामत के दिन सारी सिक्योरिटीज बंदा पास कर जाएगा, चेक इन चेक आउट के सारे मंजर जहन में ले आए, लगेज भी दे दिया, बेल्ट पे पहुंच जाएगा, बोर्डिंग पास भी मिल गया, आप हैंड कैरी लेकर स्कैनर्स में से भी गुजर गए, अब जहाज के दरवाजे पे पहुंचे मैं। पुल सरात, पुल सरात ऐसे है, यहाँ जहन्नुम है, यहाँ मैदान हशर है, यहाँ से बंदा चलता है इस जहन्नुम के ऊपर से गुजर के इधर आता है। वही मिन को मिल्ला वारी दुहा, सूरत मरियम में अल्लाह ने कह दिया तुम्हें से अरे को इस पे से ज़रूर गुजरना। अब आप इमेजिन करें, अगर यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए कोई रस्सी सी या धागा बना के दिखाऊँ तो वैसे आप समझ रहे हैं, यहाँ से आप उठें, अल्लाह ने आपको इंशाल्लाह जन्नत देनी है, क्लियरेंस मिल गई, बोर्डिंग पास हाथ में है जन्नत का, कि गो हेड जाओ जिधर जाना है। आप यहाँ से निकले, पुल सरात की वो सारी सख्तियाँ याद करें, सूरत हदीद, सूरत तहरीम, रब्बना अतमिम लना नूरना, और वो जो सारी बातें जो एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे कि तरबस तुम व फतन तुम अनफुसकुम, वो सारा गुजर गया और आप इधर पहुंच गए हैं। इधर जन्नत है ये। आप सोचे कि ये जगह, ये ग्लास है, इसको जन्नत लें, आप पूरा पुलसरात तय करके इधर पहुंच गए, यहाँ पर रोक लिए जाएंगे। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मैम पासपोर्ट प्लीज़। आपको पता है कभी कभी ऐसी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, बिल्कुल जहाज़ में जाने से पहले कभी आपके हैंडबैग को चेक करेंगे, और अमेरिका की साइड में ऐसी बहुत सी होती हैं। कुत्ते होंगे तो आपके मनी चेक करेंगे, सूंघते हैं क्या है, इस तरह की चीज़ें। दुनिया में मिसालें हैं सिर्फ, आखिरत में क्या होगा। वहाँ रुका, भाई क्यों अल्लाह ताला, ये मैं जा रहा हूँ, कहा यहाँ कुछ हिसाब तेरे चुकाने हैं। इस मुकाम को कंदरा कहते हैं, काफ नून तोए राहा। आपने फरमाया कंदरा पे जाके इंसानों के मामले बराबर होने हैं। यहाँ दो लोग झगड़ रहे होंगे, वो बड़ी प्यारी हदीस आप में से 90% ने सुनी होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और आप जब बात सुना रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया कि दो शख्स खड़े, और एक कहता है तूने मेरे साथ ज्यादती की थी, आज मुझे नेकियां दे, क्योंकि उस दिन करेंसी सिर्फ नेकियों की होगी पास। खैर, वो कहेगा छोड़ देना, माफ़ कर दे, अब छोड़ दे। दोनों झगड़ रहे होंगे, इतने में उनको बुलाने वाला बुलाएगा, इधर आओ। वो दूर एक महल, मोती का बना हुआ, पर्ल्स का, ये लेना चाहते हो? वो जो हक मांग रहा होगा वो कहेगा हाँ, तभी तो इससे नेकियां ले रहा हूँ कि थोड़ी सी कमी है, करेंसी थोड़ी कम है। और वो दूसरा कहेगा हाँ, इसीलिए तो इसको दे नहीं रहा। अच्छा, कहने वाला कहेगा अगर एक ऐसा तरीका बता दूं कि तुम दोनों ही उसमें चले जाओ तो मंजूर है? काम मंजूर है क्या? तुम इसको माफ कर दो, तुम इसको माफ कर दो। तुम्हारे इस माफ करने के अमल से तुम्हारी वो कमी करेंसी की पूरी हो जाएगी, और तुम्हें जन्नत वो महल मिल जाएगा। और इसको भी वो ज्यादती रोक रही है, जब तुम माफ करोगे तो इसका भी बैलेंस बराबर हो जाएगा। अच्छा जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। और आपने फरमाया दोनों हाथों में हाथ डालते हुए जन्नत में जा रहे होंगे, और ये मंजर बताते हुए आप मुस्कुरा दिए, आपके ये दांत साइड के नजर आने लगे। तो याद रखिए, इंसानी मामलों में डरे, बोलने का हक सबको है, बोलना सबको आता है। आपने फरमाया अपनी चर्ब जुबानी से एक बंदा ना हक तरीके से किसी की जमीन का एक टुकड़ा छीन लेता है, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों के तौक उसके गले में डाले जाएंगे। भाई बहन है ना आपस में, आप जायदाद का मसला है ना, कसर खा लें लेकिन ज्यादती ना करें। हज़रत अली कहते थे कि क़यामत के दिन मैं जालिम बन के आऊँ या मज़लूम, मैं ये गवारा कर सकता हूँ कि मैं मज़लूम हूँ, जालिम ना बनिए। तो हर वक्त की सफाइयाँ पेश करना, हर वक्त के किससे क्या हुआ, किधर किसका क्या मामला, ये ख़ानदानी सियासत से ऊपर उठिए। ये क्यूरियोसिटी और तजस्सुस करना है ना, तो कुरान और उसकी सूरतें और अहादीस में और सीरह में करें, कुछ मिल जाएगा। सारा रिसर्च वर्क सिर्फ लोगों के मामला को ना परखने में लगा, और हर वक्त माफ़ी मांगे, हर वक्त ही आप लगे। ये आज फ़ोन क्या कर रहा है, गिफ्तों को प्रमोट नहीं कर रहा, घंटों बातें करते हैं स्काइप पे लोग एक दूसरे से इधर से उधर। वही याद रखे कान ना कतरा हो, एक सेकंड नहीं लगाऊंगी मैं अपना इस बात पे कि मैं ऐसी बात यहां करूं कि जिससे इस हॉल में आने का मकसद ही खत्म हो जाए। बस अपने मामलों में सीधे रहे, आ जाके शोहरों से भी अच्छे मूड में बात कर लें कि देखें मेरे अंदर कमी बेशियां तो हैं, आप मुझे माफ कर दें। मैं करती हूँ, बहुत सारी करते हैं हम, मैं तो बहुत करती होंगी, आप तो हम कम करते होंगे। आप में से मेरे में से कोई ये नहीं कह सकता हमने अपने शौहर को कभी नाराज़ नहीं किया, वल्लाही। और इसका अपोजिट भी, कोई शौहर भी नहीं कसम खाता। माफियाँ मांग लें, खुश रहें, खुशी बांटें, आपके घरों में खुशियों के कलकारे उठें, घर खुशी का नाम है, घरों के अंदर भी एहसान रखें। हम गैरों के साथ बड़े मीठे और अपना वो कड़वे, घर में आते ही मूड खराब, तेवरी चढ़ी भी। अपना घर नहीं अच्छा लगता दूसरों का अच्छा लगता है, अपना शौहर नहीं अच्छा लगता दूसरों के अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते दूसरों के अच्छे लगते हैं, अपना ससुराल तो जहर लगता है कड़वी गोली, दूसरों के अच्छे लगते हैं। तो जब राह पड़ता है तो वाह तभी पड़ता है, लिहाजा लोगों के साथ अच्छा रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इससे। तो पहला दर्जा आपका अपने साथ, दूसरा दर्जा लोगों के साथ, और इसी में याद रखिए अगला दर्जा अगर आप ले आते हैं ना, इबादत का हुस्न, जो अल्लाह के साथ मामलों में